आशुतोष ने जब आर्य को वापस घर आने का कहा तो उसने उनके सामने एक शर्त रखी। वो चाहता था आशुतोष कैरन को घर से निकाल दे। आशुतोष ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और वहां से निकल गए। वो हॉस्पिटल से बाहर अपनी कार में बैठे सोच रहे थे, तभी उन्हें कुछ सूझा और उन्होंने किसी को कॉल किया। हेलो, मैं आपसे अभी मिलना चाहता हूँ, मैं आपका लियोनार्डो रेस्टोरेंट में वेट कर रहा हूँ, आशुतोष ने मैप में लोकेशन देखकर कहा। वो रेस्टोरेंट वहां से लगभग 15 मिनट की दूरी पर था। कॉल पर बात करने के बाद वो वहां जाने के लिए निकल पड़े। शिवी ऑफिस पहुंच चुकी थी। आर्या आज ऑफिस नहीं आया था। उसके बीमार होने की खबर पूरे ऑफिस में फैल गई थी। ध्वनि भी आर्या के साथ थी। ऐसे में ऑफिस की देखरेख वहां के मैनेजर देख रहे थे। आर्या नहीं होने की वजह से आज शिवी को अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए खुद को कवर करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। क्या बात है मैं सैयर, तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई है क्या जो ऐसे खुलेआम घूम रही हो? उसका खुला चेहरा देखकर हिमांश ने हैरानी से पूछा। शिवी ने उसकी बात पर हामी भरी। आर्या के हॉस्पिटल में होने की वजह से वो परेशान थी, इसलिए उसने ज्यादा बातचीत नहीं की और अपने काम करने की जगह पर जाकर बैठ गई। अब तक आर्या ही उसे कॉल करता था, जबकि शिवी आज भी बेसब्री से उसके कॉल का वेट कर रही थी। उसे ऑफिस आए 2 घंटे से भी ज्यादा बीत गए थे। शिवी ने इमरजेंसी का बहाना बनाकर अपना मोबाइल हिमांश को नहीं दिया। काफी देर बाद भी आर्या का कॉल नहीं आया तो झिझकते हुए उसने उसे कॉल मिलाया। उसका कॉल देखकर आर्या को भी हैरानी हुई। उसने फोन उठाकर कहा, तुमने मुझे इस टाइम कॉल कैसे किया? मुझे लगा तुम ऑफिस में हो। हाँ, ऑफिस में ही हूँ, बस तुम्हारी फिक्र हो रही तो कॉल कर लिया, शिवी ने दबी आवाज में कहा। वो टेबल के नीचे झुकी हुई थी और छुपकर बात कर रही थी। उसकी बात सुनकर आर्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वेरी बैड, अगर मैं तुम्हारा बॉस होता तो इस बात पर तुम्हें जरूर काम से निकाल देता। तुमसे मुझे कुछ ऐसे की ही उम्मीद थी। मैंने ये जानने के लिए कॉल किया था कि अब तुम कैसे हो, और तुम हो कि उल्टा मुझे ही डांट रहे हो, शिवी ने झूठी नाराजगी दिखाकर कहा। मैं ठीक हूँ और मुझे अच्छा लगा जो तुमने कॉल किया। मैं वार्ड में अकेला हूँ, क्या तुम थोड़ी देर मुझसे बात कर सकती हो? आर्या ने पूछा। उसके सामने ध्वनि बैठी थी और आर्या की बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो उसे अकेले छोड़कर बाहर चली गई। उसकी बात का जवाब देने से पहले शिवी ने इधर उधर देखा। सब अपने काम में लगे थे, पर वो ज्यादा देर छुपकर बात नहीं कर सकती थी। उसने धीमी आवाज में कहा, ठीक है, फिर 2 मिनट रुको। शिवी ने कॉल म्यूट पर लगाया और बाथरूम की तरफ दौड़ने लगी। उसे इस तरह जल्दबाजी में भागता देख चिराग दास बोले, लगता है मिस अय्यर हमसे झूठ बोल रही हैं। ये लड़की बीमारियों की दुकान है, देखो कैसे बाथरूम की तरफ दौड़कर जा रही है, जरूर आज इसका पेट खराब होगा। तुम उस पर ध्यान देने के बजाय खुद के काम पर ध्यान दोगे तो ज्यादा बेटर होगा। उसका प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो गया है क्योंकि वो टैलेंटेड है। आज तक तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुआ है? वैसे भी वो यहाँ 6 महीने के लिए है। मुझे नहीं लगता इनकी अजीबोगरीब बीमारियों को जानने के बाद मिस्टर ओबेरॉय इसे काम पर रखेंगे, काजोल ने जवाब दिया। उनके डांटने पर मिस्टर दास अपने काम में लग गए। वहीं शिवी अब बाथरूम में थी। उस फ्लोर पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम के अलावा और कोई काम नहीं करता था। शिवी बेफिक्र होकर वहां बात कर सकती थी। वहां आते ही उसने कॉल वापस अनम्यूट किया और कहा, अच्छा बताओ अगर तुम ठीक हो तो तुम्हें डिस्चार्ज क्यों नहीं मिला? क्योंकि ध्वनि ने मेरी फैमिली को यहाँ बुला लिया। जब तक मेरा पूरा चेकअप होकर उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती मुझे यहाँ से डिस्चार्ज नहीं मिलेगा। बस अब तो एक ही दुआ है, मेरी एब्सेंस में मेरी ऑफिस को कोई जू ना बना दे। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सब अपने काम को लेकर रिस्पॉन्सिबल हैं और अपना काम कर रहे हैं, शिवी ने उसे तसल्ली दी। वो जानती थी आर्या के ना होने के बावजूद ऑफिस स्टाफ पूरे जी जान से अपने काम में जुटा था। हाँ वो तो ठीक है, पर सोचो अगर तुम मेरे ऑफिस में काम कर रही होती और बिना मुझे पता लगे किसी लड़के से बात कर रही होती तो क्या पता मेरी ऑफिस में भी कोई ऐसी लड़की हो जो छुपकर अपने बॉयफ्रेंड से बातें करती हो, आर्या ने शिवी को परेशान करने के लिए कहा। अब तुम मुझे ताने मार रहे हो, पहली बात तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो और दूसरी बात मैंने सिर्फ तुम्हारे हालचाल लेने के लिए कॉल किया था, वो तो तुम अकेला फील कर रहे थे इसीलिए मैं बात करने के लिए बाहर आई। अब तो गलती से भी तुम्हें कभी कॉल ना करूं, शिवी ने मुंह बनाकर कहा। हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गया, पर आगे से सच में ऐसा मत करना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अगर तुम्हें मेरी इतनी ही केयर है तो ऑफिस खत्म होने के बाद शाम को मिलने आ जाना, उसे सब समझाने के बाद आर्या ने कॉल कट कर दिया। उसके काम को लेकर डेडिकेशन देखकर शिवी ने खुद से कहा, ये कुछ ज्यादा ही ऑनेस्ट नहीं है अपने काम को लेकर, इसकी बातों से साफ है कि ये पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करता। हे भगवान, अगर इसका बिहेवियर ऐसा ही है और मैंने उसे सच बताया तो ये सच में नाराज होगा। इसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं इसकी फ्रेंड हूँ या कुछ और भी, दिखेगा तो सिर्फ मेरा धोखा। पता नहीं मेरी ही क्यों मत मारी गई थी जो मैं ध्वनि मैम की बातों में आ गई और इससे बात करने नहीं गई। वैसे देखा जाए तो अच्छा ही हुआ, अगर उस दिन हमारी लड़ाई हो जाती तो मैं कभी नहीं जान पाती ये इतना अच्छा इंसान है। आर्या के कॉल रखने के बावजूद शिवी बाथरूम में बैठकर उसके बारे में सोच रही थी। पहले उसने उसे सब बताने का डिसीजन ले लिया था, पर आर्या का डेडिकेशन देखकर उसे अब डर लग रहा था कि कहीं सच जानने के बाद आर्या उससे नफरत ना करने लगे। मिस्टर आशुतोष ओबेरॉय लियोनार्डो रेस्टोरेंट पहुंच चुके थे। वो पिछले एक घंटे से किसी का आने का इंतजार कर रहे थे। इस एक घंटे में उन्होंने 3 बार कॉफी पी ली थी। लगभग एक घंटे बाद उन्होंने जिसे बुलाया था वो आ गई। वो उनके पास बैठते हुए बोली, आई एम सो सॉरी मिस्टर ओबेरॉय, रास्ता लंबा होने की वजह से मुझे देर हो गई। वो नंदिनी थी। टेबल पर 3 खाली कॉफी मग देखकर उन्हें एहसास हुआ कि उसे आने में काफी टाइम लग गया। कोई बात नहीं, मैं जानता था आपको आने में टाइम लगेगा। थोड़ा टाइम मैं खुद को भी देना चाहता था, इस वजह से जल्दी आ गया, आशुतोष ने जवाब दिया। नंदिनी ने उसकी बात पर हामी भरी और कहा, आपने मुझे यहाँ अचानक मिलने के लिए क्यों बुलाया? वो इसलिए क्योंकि हमारे ख्यालात काफी हद तक मिलते हैं। मुझे उस दिन आपकी वो बात अच्छी लगी जब आपने आर्या की शादी करने के बारे में कहा था। आर्या की शादी का नाम सुनकर नंदिनी के चेहरे पर चमक आ गई। उसने अपने मन में कहा, थैंक गॉड मैंने जिम को इस बारे में नहीं बताया। अब मैं खुलकर मिस्टर ओबेरॉय से आर्या और शिवी के रिश्ते के बारे में बात कर सकती हूँ। आर्या इज नॉट वेल, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, मिस्टर ओबेरॉय ने बताया। क्या हुआ उसे, वो ठीक तो है? नंदिनी ने पूछा। हाँ वो ठीक है, बस यूं ही नॉर्मली थोड़ा बहुत बीमार कोई भी हो सकता है। नंदिनी मैं चाहता हूँ आर्या अब वापस घर आ जाए। वो घर आने को तैयार भी है लेकिन उसने मेरे सामने एक शर्त रखी है, वो चाहता है मैं कैरन को घर से निकाल दूं। आशुतोष ने आर्या की शर्त के बारे में उसे बताया। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, आपने क्या करने का सोचा है? वही जो आपने कहा था, मैंने सोचा है कि मैं उसकी बात मान लूं और उसकी शर्त के बदले अपनी बात रखूं। मैं कैरन को निकाल दूंगा बट बदले में उसे मेरी पसंद की लड़की से शादी करनी होगी। आशुतोष ने अपने इरादों के बारे में नंदिनी को बताया।
वो सब तो ठीक है पर आप आर्या की जिद के आगे झुक जाएंगे। ये सही नहीं होगा कि आप कैरन को घर से निकालें। आप उससे प्यार करते हो, इस तरह बच्चों की बात में आकर हम अपने डिसीजन बदलने लगे तो फिर तो हो गया बेड़ा पार। नंदिनी ने उसे समझाने की कोशिश की। देखा, मैंने कहा था ना हम दोनों के ख्यालात काफी मिलते जुलते हैं। मैं उसके सामने दिखावा करूंगा और कुछ टाइम के लिए कैरन को कहीं और भेज दूंगा। जब वो पूरी तरह मेरी बातों के जाल में आ जाएगा, मेरी कहीं लड़की से शादी कर लेगा, तब उस दिन मैं कैरन को वापस घर ले आऊंगा और एक ग्रैंड वेडिंग करूंगा। आशुतोष के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। नंदिनी ने भी मुस्कुराकर उसकी बात पर हामी भरी। तो फिर आप मुझसे क्या चाहते हैं, मुझे यहाँ क्यों बुलाया जब खुद ही सब डिसाइड कर रखा है? नंदिनी ने हैरानी से पूछा। मुझे एक अच्छी इंडियन लड़की की तलाश है, होना हो आप मेरी उसमें मदद कर सकती हैं। क्या आपकी नज़र में कोई लड़की है जो आपकी जितनी ही खूबसूरत और समझदार हो? वेल, इस तारीफ के लिए शुक्रिया मिस्टर ओबेरॉय, मुझे भी आर्या एक नज़र में ही पसंद आ गया था और मैं उसकी शादी अपनी बेटी शिवनंदिनी से करवाना चाहती थी। वो दिखने में बहुत खूबसूरत है पर हाँ उसे भी हैंडल करना आसान नहीं होगा। मैं भी उसके लिए एक लड़का देख रही थी क्योंकि वो आजकल कुछ ज़्यादा ही उल्टी सीधी हरकतें कर रही है। नंदिनी ने उसे शिवी के बारे में बताया। तो दिक्कत क्या है, मुझे आर्या के लिए एक अच्छी लड़की चाहिए और आपको अपनी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का। वो उसकी लाइफ में आएगी तो दोनों एक दूसरे में बिजी हो जाएंगे और उल्टी सीधी हरकतें करना बंद कर देंगे। आशुतोष ने तुरंत ही नंदिनी से शिवनंदिनी का हाथ मांग लिया। वो सब तो ठीक है पर आर्या की लाइफ में कोई और लड़की तो नहीं है? वो सक्सेसफुल है, हैंडसम है, ऐसे में अफेयर होना तो नॉर्मल बात है, नंदिनी ने हिचकिचाकर पूछा। नंदिनी की बात सुनकर आशुतोष ठहाका लगाकर हंसे और बोले, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा होता तो मुझे इस बारे में पता रहता। हम दोनों के रिलेशन ठीक नहीं होने की वजह से उसने खुद को काम में डुबा लिया। फिर भी एक प्रॉब्लम है, जिम नहीं मानेंगे। मैंने उनसे इस बारे में पहले भी बात की थी पर उन्होंने यही कहा कि आर्या शिवनंदिनी के लिए सही नहीं है, वो थोड़ा रूड और एरोगेंट है। जिम ने बिल्कुल ठीक कहा, आर्या थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा रूड और एरोगेंट है, पर लड़कियों के लिए कहाँ कौन सी चीज़ मुश्किल होती है, उन्हें अच्छे से पता होता है कि कब उन्हें अपने पति की कौन सी नब्ज़ दबानी है। आप इतनी समझदार हैं तो आपकी बेटी में थोड़ी बहुत तो समझ होगी ही ना। ठीक है फिर मुझे इसके लिए जिम और शिवनंदिनी दोनों को ही मनाना होगा, नंदिनी ने अपनी तरफ से उन्हें हाँ कह दी थी। हाँ मुझे भी आर्या से बात करनी होगी और उससे पहले अपनी फैमिली से, वो मेरी इसमें हेल्प कर सकती हैं। कैरन को भी अकेले में सब समझाना होगा। ओके डन, फिर उसी दिन मिलते हैं जब हम अपना काम कर चुके होंगे। मेरी तरफ से हाँ है एंड आपकी बातों से लग रहा है कि आपको भी इस रिलेशन से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे खुशी होगी कि आपकी बेटी मेरे घर की बहू बनकर आएगी, आशुतोष ने मुस्कुराकर कहा। वो जाने के लिए खड़ा हुआ। नंदिनी को बाय बोलने के बाद वो वहां से जा चुका था। तो वही नंदिनी की इच्छा भी अब पूरी हो रही थी, उसे शिवी को कंट्रोल करने का तरीका मिल गया था।